जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भगवत गीता की जय गौर निताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्णा न शस्त्र पर न शास्त्र न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्णा हर हर महादेव जय माता की। तो फ्रेंड्स आज के सत्संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और जो पॉडकास्ट पे हमें सुन रहे हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है ना। तो फ्रेंड्स आप सबको पता है कि हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की ओर बढ़ चुके हैं है ना, और इस प्रक्रिया में हमारा सरल भगवद गीता का कोर्स भी आरंभ हम कर चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे अच्छी बात है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए हमें अपनी आध्यात्मिक यात्रा में किसी मंदिर में किसी धाम यात्रा में हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे बैठे हमें भगवान का दिव्य ज्ञान भगवान की दिव्य वाणी हम सुनने वाले हैं है ना, और घर बैठे बैठे ही हमारी अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है हमारी तीर्थ यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है ना। तो पहले तो हम श्री कृष्णा का आह्वान करते हैं कि भगवान श्री कृष्णा हमारी बुद्धि में आए, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि में भगवान विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनके इंस्ट्रक्शंस को उनके गीत को ठीक से समझ सकें और अपने जीवन में अपना सकें और खुश रह सकें। हमारा पहला चैप्टर भी स्टार्ट हो चुका है, हमने कुछ टॉपिक समझे थे ताकि हमारी नींव पक्की हो जाए ताकि हमारे जो भगवद गीता का जो ज्ञान है भगवद गीता के जो श्लोक है उनको हम गहराई से समझ सके और अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है उनको हम अप्लाई कर सके। जो हम खाली सुनने वाला ज्ञान नहीं हमने सुनना है उसको अप्लाई करना है ना। उसमें से ही एक टॉपिक है जो कि आज हम समझने वाले हैं दो रथों की तुलना है ना, क्योंकि काफी टाइम बाद सत्संग स्टार्ट हो रहा है तो भगवद गीता के श्लोकों में जाने से पहले हम थोड़ा सा फिर से समझ लेते हैं कि हम भगवद गीता क्यों पढ़ने वाले हैं, उससे होगा क्या है ना, ऐसा क्यों जरूरी है हमें भगवद गीता पढ़ना। तो इससे हमें काफी समझ आ जाएगा जो आज का टॉपिक है जो कि छूट गया था हमसे दो रथों की तुलना। आप व्हाट्सएप खोल सकते हो वहां पे मैंने दो पेजेस भेजे हैं आपको तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा थोड़ा थोड़ा है ना जब मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप साथ साथ में व्हाट्सएप खोल सकते हो। तो फर्स्ट पेज आपने पहले ओपन करना है, पहले देख लो दोनों पेजेस है ना, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपने फोकस करना है। तो हमने इसको इस तरह से समझना है ना फ्रेंड्स कि जैसे हम लोग जैसे एज ए सोल हम एक बहुत लंबी सी यात्रा पर है ना। जो ये दो रथों की तुलना टॉपिक है या कंपैरिजन ऑफ टू चैरिट्स, तो होती क्या है ये दो रथों की तुलना क्या है ना। तो इसको हम थोड़ा सा पहले बेसिकली इस तरह से समझते हैं कि जैसे होता है ना एक बच्चा होता है छोटा एक छोटा सा बच्चा है पहले उसका जन्म हुआ है ना, छोटा सा होता है चलना सीखता है फिर वो 3 इयर्स 4 इयर्स का होता है तो उसको हम स्कूल में डालते हैं। जब वो थोड़ा बड़ा होता है ना उसको पता चलने शुरू हो जाता है कि मैं पहले प्री नर्सरी में जाऊंगा फिर नर्सरी में जाऊंगा फिर LKG में जाऊंगा फिर मैं UKG में जाऊंगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th है ना, फिर 10th class आती है 12th आती है, फिर हमें पता होता है कि मैंने कॉलेज में जाना है ना, फिर हायर एजुकेशन लेनी है तो मैंने यूनिवर्सिटी में जाना है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में हमें फ्रेंड्स कुछ भी पता नहीं होता, स्पिरिचुअलिटी क्या है, भक्ति क्या होती है, रियल मीनिंग क्या है भक्ति का, हमें कुछ भी पता नहीं होता। हमें क्या लगता है कि बस 2 टाइम की भक्ति कर ली, वो जोत जगा ली, भगवान के आगे मंत्र फेर लिए, किताबें पढ़ ली, बस पूरा टाइम बाकी मनगढ़ंत जीवन जिया, 1 घंटा भगवान के, 1 घंटा भी नहीं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ मैं, 15-20 मिनट मान लो भगवान के आगे हम लगाते हैं और बाकी पूरा टाइम हम अपना मनगढ़ंत जीवन जीते हैं है ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग क्या होता है, भक्ति का रियल मीनिंग क्या है ना, स्पिरिचुअल लाइफ नहीं पता होती हमें कि हम है कहाँ और हमें जाना कहाँ है ना। क्योंकि फ्रेंड जब तक हमें पता ना हो ना हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होता कि हमें पहुंचना कहाँ है, तब तक हमें समझ ही नहीं होगी कि करना क्या है। हमें लगता है जो हम कर रहे हैं बस वो अच्छा कर रहे हैं और वो जो हम कर रहे होते हैं वो जो जीवन हम जी रहे होते हैं जिसमें मान लो हम सारी बातें अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं भगवान से भी और लोगों से भी, तो क्या हम उसमें खुश हो जाते हैं? मान लो मैं अपना जीवन जी रही हूँ, है ना, और मैं मेरी सारी बातें मानते हैं, भगवान भी मानते हैं या आसपास के लोग भी मानते हैं, तो तब भी क्या हम खुश होते हैं? हमारे डिजायर्स भी पूरी हो जाएं, है ना, 10 में से 7-8 डिजायर्स तो भगवान आराम से पूरी करते हैं, तब भी क्या हम खुश होते हैं, है ना? वो इसलिए क्योंकि हमें पता ही नहीं होता हमें एक्चुअली करना क्या है, हमें लाइफ में लाइफ जीनी कैसे है, है ना, क्योंकि बचपन से ही हमें ऐसी कोई स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं मिलती है, ना घर में, ना स्कूल में, ना कोई कॉलेज में, कोई ऐसे टॉपिक नहीं सुने होते हमने। और स्कूल लाइफ में भी जैसे अगर हम अपना टारगेट बना लें, है ना, कि मैंने MBA करनी है या मैंने इंजीनियरिंग करनी है या मैंने डॉक्टर बनना है या मैंने टीचर बनना है, तो फिर वो उस हिसाब से स्टडी करता है। 10th 11th में वो बच्चा थोड़ा सिंसियर हो जाता है, उस दिशा में मेहनत करने लग जाता है ना, तो फिर आपको क्लियर हो जाता है ना कि आपको जाना कहाँ है। 9th 10th में उनको क्लियरिटी आनी शुरू हो जाती है कि मुझे मेडिकल लेना चाहिए या नॉन मेडिकल लेना चाहिए, या मुझे आर्ट्स लेना चाहिए, या मुझे IAS बनना है या टीचर बनना है, तो फिर हम उस दिशा में मेहनत करते हैं। तो इसको हम ऐसा समझते हैं ना कि जैसे हम नर्सरी में स्कूल स्टार्ट करते हैं और हमें हायर लेवल की एजुकेशन पर जाना होता है, मटेरियल लाइफ को हम इस तरह से जीते हैं कि हमें PhD करनी है या हमें कुछ भी हायर एजुकेशन में जाना है। तो वैसे ही मान लीजिए फ्रेंड्स, डिवोशन भी एक स्कूल की तरह, स्पिरिचुअल लाइफ भी एक स्कूल की तरह, कि जब सोल नर्सरी में होती है या नर्सरी से पहले जब उसने स्कूल में एडमिशन नहीं ली होती तो उसकी अवस्था क्या होती है ना, तो फिर वो PhD की अवस्था में जब पहुंच जाती है तब उसकी अवस्था क्या होती है ना। तो ये समझने के लिए फ्रेंड्स हमें दो रथों की तुलना, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही मेरा पर्सनली बहुत ही मतलब फेवरेट टॉपिक है ये सारा, तो पता नहीं कैसे छूट गया मेरे से, तो मुझे लगा कि पहले मुझे यही टॉपिक करवाना चाहिए, है ना। तो ये जो दो रथों की तुलना है ना, इसमें जो पहला रथ है ना, इसमें हम देखेंगे कि ये जो ये वो स्टेज होती है कि किसी ने डिवोशन के स्कूल में एडमिशन नहीं ली होती, जो पहला पेज है ना, उसमें क्या होता है, उसमें एक व्यक्ति ने स्पिरिचुअलिटी में भक्ति में एडमिशन नहीं ली होती, रियल मीनिंग ऑफ डिवोशन, तब क्या हालात होते हैं। और जब परफेक्शन की स्टेज आ जाती है, परफेक्शन मतलब जहां हमें पहुंचना है, तब क्या हालात होते हैं। सेकेंड पेज है ना, कृष्ण और अर्जुन का रथ, ये वाला पेज देखो। तो इन दोनों रथों की तुलना से हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि हम अभी कहाँ है और हमें पहुंचना कहाँ है ना। तो जब कहाँ पहुंचना क्लियर हो जाएगा तो फिर समझ आ जाता है कि हमें किन किन चीजों पे मेहनत करनी है, तो फिर हम सब वहां पे पहुंच सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत। तो पहला पेज पढ़ लो पूजा जी, दोनों रथों की तुलना, फर्स्ट पेज पढ़ लो। हरी बोल।
हरी हरी बोल एवरीवन। पार्ट वन, जंगली घोड़ों का रथ। पॉइंट नंबर वन, ये रथ अधिकतर मोहग्रस्त लोगों की स्थिति को दर्शाता है। पॉइंट टू, ये भक्ति के स्कूल में दाखिला लेने के पहले की अवस्था को दर्शाता है। पॉइंट नंबर थ्री, जंगली घोड़े अनियंत्रित इंद्रियों को दर्शाते हैं। पॉइंट फोर, घोड़ों की लगाम अनियंत्रित मन को दर्शाती है। 5, सारथी प्रदूषित बुद्धि को दर्शाता है। 6, सवार घबराए हुए असहाय और मोहग्रस्त जीव को दर्शाता है। मैं रिपीट करती हूँ, पॉइंट नंबर 1, ये रथ अधिकतर मोहग्रस्त लोगों की स्थिति को दर्शाता है। पॉइंट 2, ये भक्ति के स्कूल में दाखिला लेने के पहले की अवस्था को दर्शाता है। पॉइंट 3, जंगली घोड़े अनियंत्रित इंद्रियों को दर्शाते हैं। पॉइंट 4, घोड़ों की लगाम अनियंत्रित मन को दर्शाती है। पॉइंट 5, सारथी प्रदूषित बुद्धि को दर्शाता है। पॉइंट 6, सवार घबराए हुए असहाय और मोहग्रस्त जीव को दर्शाता है, आत्मा जो कि असल में हम है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। तो आप सब खोल लो, है ना, वो व्हाट्सएप, तो समझना इजी हो जाएगा आपको, है ना। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेज पर है और जो फर्स्ट पेज पर भी है, जंगली घोड़ों का रथ, ध्यान से देखो उसको। 5 घोड़े दिखाए हैं, है ना, अलग अलग कलर के, लाल, काले, नीले, एक व्हाइट भी है। घोड़ों पर देखो, ध्यान से देखो, एक एक करके 5 सेंसेस बनी हुई हैं। किसी घोड़े पे आंखें बनी हुई हैं, कहीं पे नाक, कहीं पे कान, कहीं पे स्किन होता है सेंस ऑर्गन, मतलब उसका हाथ बना हुआ है, और कहीं पे जीभ बनी हुई है। हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं ना, है ना, वैसे तो ज्यादा होते हैं लेकिन मेनली 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। आईज, जिससे कि हम देखते हैं, इयर्स, जिससे हम साउंड सुनते हैं, टंग, टेस्ट के लिए खाते हैं जिससे हम, है ना, टेस्ट करते हैं, नोज, स्मेल करते हैं, स्किन, टच करते हैं जिससे हम, है ना। तो मेनली ये फाइव सेंस ऑर्गन्स हैं जो कि हम बाहर की चीजों को हम इन फाइव सेंसेस के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, है ना। बाहर जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो भी बाहर चीजें हैं, उन चीजों को हम इन सेंसेस के द्वारा अनुभव करते हैं। और जब हम डिवोशन की, भक्ति की, प्राइमरी स्कूल में भी हमने एडमिशन नहीं ली होती ना, मतलब जब हम भगवान से बहुत दूर होते हैं, हमें भक्ति का रियल मीनिंग नहीं पता होता, तब हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड होती हैं, है ना। एक इंद्री कहती है चलो कुछ खा लेते हैं, पेट भरा हुआ है फिर भी कुछ खाना है। एक इंद्री कहती है चलो बाहर घूम लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। एक इंद्री कहती है कुछ टच कर लेते हैं, और एक इंद्री कहती है चलो कुछ म्यूजिक सुन लेते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी भटकी होती हैं। और ये जो घोड़ों की लगाम है, दिख रही होगी है ना आपको पेजेस पे, और जो पॉडकास्ट पे हमें सुन रहे हैं आप लोग, आपको दिख जाएगा यूट्यूब पे कंपैरिजंस ऑफ टू चैरियट्स डालोगे तो आपको वहां पे अपने आप ही वो चैप्टर खुल जाएगा, दो पेजेस दिख जाएंगे आपको, है ना, तो आपको समझ आ जाएगा। और ये जो घोड़ों की लगाम पकड़ के रखी है ब्लू में, जो एक लेडी है ब्लू कपड़ों में, है ना, ये क्या है, ये हमारा माइंड है, मन, जिसको कि मन बोलते हैं, कि जो कि दिखता नहीं है। बोलते ना मेरा मन नहीं कर रहा है सुबह उठने का, मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ खाने का, मेरा मन नहीं कर रहा है उससे बात करने का, है ना। तो ये जो घोड़ों की लगाम है ना, हमारे जो सेंसेस की जो लगाम है ना, वो मन के हाथों में होती है। ये लाल काले नीले घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में जाते आपको दिख रहे होंगे, है ना, अनियंत्रित इंद्रियों को दर्शा रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड सेंसेस को दर्शा रहे हैं। और हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है, मन। और ये ब्लू कलर में जो लेडी दिख रही है आपको, जिसने लगाम पकड़ी हुई है मन की, ये कौन है, ये है सारथी, दूषित बुद्धि भी कहते हैं इसे, जो कि इस रथ को चला रही है, जंगली घोड़ों के रथ को जो चला रही है। ये जो ब्लू कलर की ड्रेस में एक लेडी है, है ना, जिसने लगाम पकड़ी हुई है, ये है सारथी, जिसको कि दूषित बुद्धि भी कहते हैं इसे। बुद्धि मींस इंटेलिजेंस, दूषित मींस इसमें करप्शन है, दूषित बुद्धि है, क्योंकि इसे सही गलत की पहचान नहीं है, है ना, क्योंकि वो मन को, अनियंत्रित मन को कंट्रोल कर रही है। कंट्रोल करने वाला भी तो कोई इंटेलिजेंट चाहिए ना, है ना। तो एक दूषित बुद्धि अनियंत्रित मन को कंट्रोल कर रही है। और जो पीछे जो सवार है, पीछे देखो एक वाइट से कपड़ों में एक व्यक्ति बैठा हुआ है ना, पीछे जो सवार है वो घबराया हुआ है, वो है हम लोग, मतलब हम, मतलब एज आत्मा, है ना, एज ए सोल वो एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है ना। और ये जो रथ, पूरा जो रथ जो दिख रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारे शरीर को। ये रथ उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जब कोई ईश्वर से बहुत दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है उसका। ये जो फर्स्ट पेज का रथ है ना, जो दोनों रथों की तुलना, जो फर्स्ट पेज है, जो अभी पूजा जी ने आपको रीड किया, जंगली घोड़ों का रथ, ये उस अवस्था को, उस सोल की, मतलब सोल की बात हो रही है ना, सोल की उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जब हमारा ईश्वर से कोई दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है, है ना। कनेक्शन अगर है भी है तो क्या है, बस वही है कि हम भगवान से डर जाते हैं, है ना, या फिर हमें कुछ मांगना है, हमें कुछ चाहिए होता है तो भगवान के पास जाते हैं कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, यहाँ तक कनेक्शन होता है हमारा भगवान से। या हमें लगता है कि हमें सारी चीजें, कहीं हमसे कुछ छूट ना जाए, है ना, भगवान गुस्सा ना हो जाए हमसे, दो चीजें ही होती हैं, तो हमें कुछ चाहिए होता है, हमें लगता है कि चलो हमारी लाइफ कंफर्टेबल चलती रहे, है ना, इसलिए हम भगवान से डिजायर्स मांगते रहते हैं, ये पूरी कर दो, मेरी ये चीजें पूरी कर दो, तो एक लंबी लिस्ट लेके जाते हैं, बस वो वाली भक्ति में हम आगे रहते हैं, उसके लिए मंदिर जा रहे हैं, उसी के लिए धाम यात्रा कर रहे हैं, है ना, बाकी जीवन अपना पूरा मन गढ़न जीवन जीते हैं। देखो ये रथ उस अवस्था को रिप्रेजेंट करता है जब कोई ईश्वर से बहुत दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है उसका, तो वो अंदर से वो आत्मा रूप में कैसा फील करेगा, डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, है ना, परेशान परेशान फील करेगा अपने आप को। जैसे आप इमेजिन करो, मान लो आप एक गाड़ी में पीछे बैठे हो, है ना, जैसे एक पूरा रथ है, रथ की जगह आप सोच लो एक गाड़ी में मैं बैठी हूँ, पीछे बैठी हूँ एज ए सोल, है ना, और आपका जो ड्राइवर है, ड्राइवर मतलब सारथी, उसने मान लो बहुत सारी ड्रिंक की हुई है और वो 150 स्पीड पर गाड़ी चला रहा है, तो आप कैसे फील करोगे, आप पीछे बैठकर आप बिल्कुल घबरा जाओगे ना, टेंस हो जाओगे, सफोकेशन फील करोगे। वही फीलिंग वर्ल्ड में मेजॉरिटी लोग फील कर रहे हैं फ्रेंड्स, घबराए हुए, परेशान भाग रहे हैं, पता है नहीं ये करना क्या है लाइफ में, क्या नहीं करना, खुद भी परेशान रहते हैं, दूसरों को भी परेशान करते हैं, है ना। वैसे ही फ्रेंड, जब हम ईश्वर से दूर होते हैं ना, तो हमारी बुद्धि भी दूषित हो जाती है और हमारा मन बेलगाम हो जाता है, मतलब घोड़े बेलगाम होते हैं, हमारी इंद्रियां, घोड़े मतलब हमारी इंद्रियां बेलगाम होती हैं, वो कुछ भी करती हैं, और हमें क्या लगता है कि जो हमारा मन बोल रहा है, जो हमारी इंद्रियां बोलती है, हमें वैसा ही करना, क्योंकि हम खुद को मन समझ रहे होते हैं, है ना। और जब हम मन गढ़ंत जीवन जीते हैं और इसी अवस्था को क्या कहते हैं फिर, डिप्रेशन कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, मेजोरिटी लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हमारे अंदर एक मन होता है और हमारे अंदर एक बुद्धि भी होती है, और हमें बुद्धि की बात सुननी चाहिए। बुद्धि बॉस होती है मन का, और मन चंचल है। भगवद गीता पढ़ने से पहले मुझे भी ऐसा कुछ पता नहीं था। तो मतलब वर्ल्ड में मेजोरिटी लोगों को ये पता नहीं होता कि मन और बुद्धि में कुछ डिफरेंस होता है, और मेजोरिटी लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम है कौन, हम शरीर है, हम मन है, या हम सोल है, है ना। देखो एक बचाव बचाव करता हुआ पीछे बैठा है, सोल जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो मेजोरिटी लोगों को ये पता नहीं होता कि मैं एक सोल हूं। मतलब आपके हिसाब से गाड़ी को चलना चाहिए या गाड़ी के हिसाब से आपको चलना चाहिए, हमें यही नहीं पता होता। सोल के हिसाब से गाड़ी को चलना चाहिए या हमें अपने मन इंद्रियों के हिसाब से चलना चाहिए, है ना। अगर ऐसा हो तो फ्रेंड्स, हाथ और पांव हमारे हिसाब से ना चल रहे हो, और हमारी गाड़ी, मान लो हमने ऑफिस में जाना है और उसकी जगह वो चली जाए हॉस्पिटल में जा रही है या शॉपिंग मॉल में जा रही है, तो लोग हमें क्या कहेंगे कि क्या हो गया इनको, या हमें भी लगेगा कि यार हमने जाना तो ऑफिस था लेकिन ये मैं कहाँ जा रही, ना तो शॉपिंग मॉल जा रही, है ना। और हो यही रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, हम करना चाहते क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं है लाइफ में। और मेजोरिटी लोगों की जिंदगी ऐसे ही कट रही है फ्रेंड्स, डायरेक्शन लेस लाइफ, एक वेस्टफुल लाइफ, जिसमें एक इंसान का जीवन टाइम पास करते करते अपना मन गढ़ंत जीवन जीते जीते खत्म हो जाता है फ्रेंड्स। और ये हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, है ना। तो जंगली घोड़े अनियंत्रित इंद्रियों को, अनकंट्रोल्ड सेंसेस को रिप्रेजेंट करती हैं, और घोड़ों की लगाम हमारा बिगड़ा हुआ चंचल मन है। और जो ब्लू कलर की लेडी है, ब्लू कलर की जिसने ड्रेस पहनी हुई है, वो सारथी है, वो दूषित बुद्धि है। और पीछे घबराया हुआ जो पैसेंजर है, वो हम हैं एज आत्मा, मतलब आत्मा को वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये वो स्टेज है जिसके जीवन में अभी फ्रेंड्स डिवोशन की कोई शुरुआत नहीं हुई है, भक्ति का मतलब नहीं पता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब नहीं पता है, जिसमें एक व्यक्ति अपना मन गणन जीवन जीता है। मतलब अभी आप नर्सरी में भी नहीं आए, आप डिवोशन के स्कूल में, ऐसी अवस्था को दर्शाता है ये जंगली घोड़ों का रथ। और रथ मतलब हमारा शरीर है पूरा, पूरी बॉडी, और उसके बाहर का क्षेत्र कुरुक्षेत्र का मैदान, बल कुरुक्षेत्र का मैदान मतलब सबका जीवन है, जो भी हमारा मटेरियल लाइफ है वो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जो हमें बाहर दिखती हैं, जो परिस्थितियां, जो सिचुएशंस, जिसको कि हमने ABCD मॉडल में समझा था, जो बाहर जो भी सिचुएशंस है हमारी, है ना, ए फॉर अंदरूनी कुरुक्षेत्र, जो हमारे अंदर द्वंद चलता रहता है, बी फॉर बेसिक फैमिली लाइफ, है ना, जो हमारी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, अपने जो जो भी 8-10 लोगों के साथ हमारा जो जीवन होता है, सी फॉर कैरियर, है ना, जो रोजगार से जुड़ी हमारी समस्याएं हैं, परिस्थितियां हैं, उसको दर्शाता है सी, और डी फॉर डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, हमने समझा था कि हमें डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन में जाना है, जो भी हम वेस्टफुल एक्टिविटीज करते हैं उसको घटाकर, अपनी रोजमर्रा की जो हमारी ड्यूटीज हैं उनको वेस्ट वे में करके, जो टाइम हम वेस्ट करते हैं उसमें हमें क्या करना है, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। जो रथ है या ये जो सिचुएशन है, इसमें हमारा अभी ईश्वर से कोई कनेक्शन नहीं, मतलब अभी हमने भक्ति के स्कूल में एडमिशन नहीं ली हुई है, और अब हम अगर भगवान से हमारा परफेक्ट कनेक्शन हो जाए, अगर हम समझ जाए चीजों को टाइमली, इस जीवन को छोड़ने से पहले, इस शरीर को छोड़ने से पहले, अगर हम टाइमली चीजें समझ जाए और हमारी भगवान से परफेक्ट कनेक्शन हो जाए, जो भी भगवान हमें इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं भगवद गीता में, वो अगर हम अच्छे से समझ जाए, तो फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, ये हम कृष्ण और अर्जुन के रथ से समझेंगे, है ना। हाँ जी पूजा जी, पढ़ लो आप नेक्स्ट बी पार्ट, कृष्ण और अर्जुन का रथ। हरि बोल।
हरी हरी बोल। पार्ट बी, कृष्ण और अर्जुन का रथ। पॉइंट वन, ये भक्ति की उच्च स्थिति यानी PhD को दर्शाता है, शुद्ध अमिश्रित भक्ति। पॉइंट टू, ये रथ मानव जीवन की संपूर्णता को दर्शाता है। पॉइंट थ्री, करिष्ते वचनम तव, मैं तुम्हारे निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट फोर, समृद्धि विजय अलौकिक शक्ति और नीति को विस्तार पूर्वक बताता है। रिपीट करती हूँ, पार्ट सेकेंड, कृष्ण और अर्जुन का रथ। पॉइंट वन, ये भक्ति की उच्च स्थिति यानी PhD को दर्शाता है, शुद्ध अमिश्रित भक्ति। पॉइंट टू, ये रथ मानव जीवन की संपूर्णता को दर्शाता है। पॉइंट थ्री, करिष्ये वचनम त्व, मैं तुम्हारे निर्देश अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूँ। पॉइंट फोर, समृद्धि विजय अलौकिक शक्ति और नीति को विस्तार पूर्वक बताता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच पूजा जी, है ना। तो अब हम बी पार्ट कृष्ण और अर्जुन का रथ समझने वाले हैं। कृष्ण और अर्जुन का रथ मतलब अब हम परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ की ओर बढ़ते हैं कि ये है क्या और हम सबको यहाँ पर पहुंचना है फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट है जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ। देखो आप घोड़े देखो व्हाइट सारे सफेद रंग के हैं। सफेद का मतलब है प्योरिटी, सफेद का मतलब है कि इंद्रियां प्योर हो गई हैं, शुद्ध हो गई हैं, एक ही डायरेक्शन में फोकस्ड, एक ही डायरेक्शन में। देखो कैसे सदे हुए घोड़े लग रहे हैं। घोड़ों की लगाम जो मन है किसके हाथ में है? भगवान श्री कृष्ण के। आपने महाभारत में भी देखा होगा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ, है ना, कितना मतलब अद्भुत सीन होता था जब वो रथ हम देखते थे तो, है ना। और सबसे बड़ा बदलाव यही है फ्रेंड्स भगवद गीता पढ़ के कि सारथी की सीट में भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश भी कहते हैं, इंद्रियों के स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। और घोड़ों की लगाम जो मन है वो किसके हाथ में है? भगवान श्री कृष्णा के हाथ में। तो पीछे देखो आत्मा मतलब अर्जुन को देखो कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है, फोकस्ड, है ना। जब भगवान श्री कृष्ण उसके सारथी बन गए, है ना, मन को उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया, तो अर्जुन देखो देखो कितना फोकस्ड और कितना कॉन्फिडेंट लग रहा है। देखो फ्रेंड्स जब भी हम भगवद गीता पढ़ते हैं या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या कोई भी अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, है ना, जब हमें थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाती है तो एक्सटर्नल सिचुएशंस तो वही रहती हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता कि भगवान हमारी बड़ी कोई कंफर्टेबल लाइफ कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बदलाव कहाँ आए? पहले आत्मा बचाओ बचाओ करती हुई घबराई हुई आत्मा थी, परेशान लग रही थी, डिस्टर्ब लग रही थी आत्मा। अब क्या हो गया? अब सुपर कॉन्फिडेंट आत्मा होगी, है ना, मतलब जो अपनी लाइफ के संघर्षों को फ्रेंड्स, अपनी लाइफ के डिफिकल्टीज को भगवान की शरण में रहते हुए डील करने को तैयार है। प्रॉब्लम्स तो आनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि भगवद गीता हम पढ़ेंगे या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन भगवान हमें उनसे डील करना कैसे है वो सिखा देंगे, कॉन्फिडेंस से हमें भर देंगे कि कैसे हमें इस सिचुएशंस को डील करना, अर्जुन की तरह हमें कॉन्फिडेंस देंगे, है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि पहले इंद्रियां आउट ऑफ कंट्रोल थी और यहाँ पर इंद्रियां प्योर हो गई, है ना। तो बाहर की सिचुएशन में मतलब हमारे जीवन के कुरुक्षेत्र में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है, फोकस्ड हो जाते हैं हम लोग। तो इस रथ और पिछले रथ में क्या डिफरेंस है अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि पहले रथ में इंद्रियां कैसी हैं? जंगली, और बुद्धि कैसी थी? दूषित, और आत्मा कैसी थी? घबराई हुई, है ना। और यहाँ घोड़े जो हैं, जो दूसरे सेकेंड पार्ट जो अभी पूजा जी ने रीड किया कृष्ण और अर्जुन का रथ, है ना, उसमें जो घोड़े हैं वो सफेद फोकस्ड कंट्रोल्ड, है ना, मन की लगाम क्योंकि भगवान के हाथ में। अब इसको ये नहीं सोचना है कि ये तो कृष्ण और अर्जुन का रथ है, इसको अपने से कंपेयर करना है ना, अर्जुन को अपने से कंपेयर करना है ना, कि हम भी इस रथ में हमारी भी एंट्री हो सकती है, है ना। तो यहाँ घोड़े जो है सफेद फोकस्ड कंट्रोल्ड, है ना, और मन की लगाम क्योंकि भगवान श्री कृष्णा के हाथों में, और आत्मा फोकस्ड कॉन्फिडेंस में दिख रही है ना। तो ये है हाईएस्ट परफेक्शन जो एक सोल अचीव कर सकती है, जो हम सब अचीव कर सकते हैं, और हम सबको इस हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। अभी तो चलो थ्योरी में हमें पता लग रही हैं चीजें, है ना, पहले तो ये भी नहीं पता था, है ना, कुछ पता नहीं था, मन का कॉन्सेप्ट, बुद्धि का कॉन्सेप्ट, आत्मा का कॉन्सेप्ट, इवन भगवान का कॉन्सेप्ट, भक्ति का कॉन्सेप्ट, है ना। तो अब ये चीजें हमें पता लग रही है, भगवान हमें थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे हैं, हम भी उस परफेक्शन की स्टेज में पहुंच सकते हैं। लेकिन चलना कैसे है? भगवान के बताए हुए रास्ते में, उसमें अपना मन घृणित जीवन जीना छोड़ना पड़ना है, जो भगवान बोल रहे हैं वैसा करना है। अंदर से आवाज आती है ना, आपको आ जाती है ना, जब हम गलत काम करने लगते हैं तो बोलते हैं ना अंदर से कि नहीं नहीं ये नहीं करना चाहिए, बस वही आवाज को हमें सुनना है ना। तो हम सब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इन दोनों रथों के बीच में है, है ना। तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि पिछले वाले जो फर्स्ट पेज वाला है जंगली घोड़ों का रथ, यहाँ पे बुद्धि जो है वो दूषित थी, करप्टेड है यहाँ पे, और दूसरे रथ में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं बुद्धि की सीट पे, तो दूषित बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण का आना, गॉड का आना, प्योरिटी का आना, स्पिरिचुअलिटी का आना, ईश्वर का आना, जिसको भी आप मानते हो, यही डिफरेंस है बस, कि दूषित बुद्धि में भगवान श्री कृष्णा आ जाते हैं। और ये बदलाव हुआ कैसे, कैसे हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, कि बदलाव कैसे होगा ये। हम फ्रेंड्स देखो गोलोक एक्सप्रेस में हमने एक ही चीज समझी है, देखो जो भी इस रास्ते में चले ना, भक्ति के रास्ते में या जो भी चीजें हमें बताई जा रही हैं, अगर हम इसमें अपना इफ बट लगाएंगे ना, अपना मन लगाएंगे ना, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। हमने क्या किया, हमने डिस्ट्रक्टिव टू डिवोशन का रास्ता अपनाया। डिस्ट्रक्टिव जो हम टाइम पास वाली वेस्टफुल जो एक्टिविटीज हम करते हैं ना, उसकी जगह हमने क्या किया, धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को, सत्संग साधना सेवा सदाचार, इन सारी एक्टिविटीज को हमने बढ़ाया, है ना। मतलब हमें क्या करना है, अपनी जो वेस्टफुल, जहां पे हम टाइम वेस्ट वाली गतिविधियां करते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया था क्या वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं, है ना, जहाँ पे हम अपने, अब ये नहीं हम बोल सकते कि हमें बहुत सारा काम होता है, हमें किचन में काम होता है, हमें कैरियर में हमने अपनी ड्यूटीज देनी है, है ना। इसके अलावा हम बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं फ्रेंड्स, घंटों घंटों गप्पे मारते रहना, निंदा चुगली करते रहना, टीवी पे टाइम वेस्ट करना, सोते रहना, शॉपिंग करते रहना, बहुत सारी वेस्टफुल हम एक्टिविटीज करते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो धीरे धीरे इस डिस्ट्रक्टिव टाइम को हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ रिप्लेस करना है, है ना। देखो हमारे घर में अगर किसी स्पेशल गेस्ट ने आना है, हम जॉब करते हैं, हमारे बॉस ने आना है या हमारे पेरेंट्स ने आना है, तो हम क्या करेंगे, घर को पूरा साफ सुथरा करेंगे, है ना, पूरी डस्टिंग करेंगे, अच्छे से पेंट करवाने वाला है तो पेंट भी करवाएंगे, है ना, कैसे गंदे घर में बुला लेंगे किसी भी स्पेशल चीफ गेस्ट को। तो यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान का सारथी बनना, मतलब किसको इनवाइट करना है, भगवान श्री कृष्ण का अपनी बुद्धि में आना, मतलब प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट, मतलब सारे मालिकों के मालिक का आना है। उसके लिए हमें कुछ प्रेपरेशन तो करनी पड़ेगी ना, हमें सफाई करनी पड़ेगी। कैसे हम बोलेंगे भगवान कृष्ण हमारे बुद्धि में आ जाओ तो वो आ जाएंगे, नहीं होगा ना, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ प्रेपरेशंस करनी पड़ती है। हमें जैसे हम घर की साफ सफाई करेंगे तो हमें अपनी बुद्धि की सफाई करनी पड़ेगी, है ना। और वो बुद्धि की सफाई ऐसा बोलने से थोड़ी हो जाएगी, है ना। जब हम अपने जीवन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनाएंगे, सत्संग साधना सेवा सदाचार को अपनाएंगे, है ना, बहुत सारी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के बारे में हम बात करते रहते हैं बार बार, जब भी हम भगवद गीता के श्लोक पढ़ेंगे उसमें भी हम बार बार बात करेंगे। बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, जैसे भगवान का नाम जप करना, मेडिटेशन करना, भोग लगाना, भगवान से जुड़ी बातें करना, आरती करना, है ना, जो भी अपने उपनिषद है, अपने भगवद गीता जैसे ग्रंथ है उनको पढ़ना, है ना, जो भी एक्टिविटीज हम इस दुनियादारी से अलग होकर जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं ना, मतलब भगवान से जुड़ी एक्टिविटीज करना, है ना, जिसमें हम थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज जब हम करेंगे, और जो हम टाइम पास वाली गतिविधियां करते हैं दुनियादारी की चीजों में, जब हम उलझे रहते हैं, फालतू टाइम पास वाली एक्टिविटीज, इसकी निंदा चुगली करते हैं, उसकी निंदा चुगली हो रही है, है ना, टीवी देखते रहते हैं, सोते रहते हैं या शॉपिंग करते रहते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी चीजें इकट्ठी करते रहते हैं, उसको जब हम अपने जीवन में घटाएंगे ना, तो हमारी बुद्धि शुद्ध होनी शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, परसेंटेज में हमारी बुद्धि में भगवान आने शुरू हो जाएंगे। ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स, है ना, कि हमने ये समझ लिया तो हम सोचे कि आज ही हमारी बुद्धि में भगवान आ जाएंगे और हमारा जी बदल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। क्योंकि बहुत बहुत जो तपस्वी लोग भी होते हैं ना, जो बहुत डिवोशन में आगे होते हैं, है ना, वो भी मन को नियंत्रण में नहीं ला सकते फ्रेंड्स। जब भगवान की कृपा होती है, जब भगवान श्री कृष्णा किसी की बुद्धि में आएंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ऋषिकेश हैं, मायापति हैं, वो इंद्रियों के स्वामी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ही मन को नियंत्रण में ला सकते हैं, है ना। तो हमें क्या सोचना है, हमें डिवोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाना है अपनी लाइफ में, और हमें ये नहीं सोचना है कि बुरी आदतें कैसे छुटेंगी, कैसे मेरा मन पवित्र होगा, कैसे मेरी अंतरात्मा पवित्र होगी, कैसे मेरी बुद्धि निर्मल होगी, हमें ये नहीं सोचना है। हमें ये, वो तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट छूट जाएंगी हमारी बुरी आदतें, है ना, चाहे वो ड्रिंक की हैबिट है, चाहे वो सिगरेट की हैबिट है, या वो नॉन वेज की हैबिट है, या वो अपनी इंटरनल हमारी जो डेमोनिक क्वालिटीज है, जो भी हमारे राक्षसी गुण है, वो भी अपने आप फ्रेंड्स, जो हमारी बुरी आदतें हैं, कंपैरिजन करना, ईर्ष्या में पड़े रहना, गुस्सा करना, द्वेष करना, जेलसी करना, वो अपने आप ये सब चीजें फ्रेंड छूट जाती हैं। तो हमने ये सोचना है कि बुद्धि में श्री कृष्णा को कैसे लाना है ना। फिर होगा क्या, वही परिस्थितियां जो पहले हमें पहाड़ जैसी लगती थी, जैसे देखो हनुमान जी को भगवान ने कहा कि संजीवनी बूटी लेकर आनी, तो उन्होंने कोई प्रश्न किया कि क्यों मुझे फालतू के काम दे रहे हो, क्यों नहीं मैं जंगल में जाके आपका नाम ले लेता हूँ, है ना, किसी और को बोल दो, मुझे क्यों बोल रहे हो, है ना, ऐसा कोई प्रश्न नहीं किया उन्होंने, कहा ऐसा उन्होंने। और हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं जब हमें लाइफ में हल्की सी भी कुछ बुरी सिचुएशन आती है, या कोई भी ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। जरा भी अनकंफर्टेबल लाइफ होती है तो हम क्या करते हैं, भगवान को कोसते हैं, अपने आसपास के लोगों को कोसना शुरू हो जाते हैं। और हनुमान जी की तरफ देखो, उनको पहाड़ भी फूल जैसा लगा, और हमें फूल भी पहाड़ जैसे लगते हैं। छोटी छोटी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, छोटी छोटी सिचुएशन देखो कि उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। छोटी सी सिचुएशंस है ना, उसमें हम अपने आप को उनका गुलाम बना लेते हैं कि किसी ने मुझे कुछ कह दिया। कितने दिन कितने घंटे हम उसी में वेस्ट कर देते हैं, है ना। दोनों रथों में आप ऑब्जर्व करो फ्रेंड, सिर्फ एक मानसिक अवस्था आपकी, स्टेट ऑफ माइंड बदल जाएगी, बस यही होगा, और कुछ नहीं होने वाला। आपको पहले छोटी छोटी बातें पहाड़ जैसी लगती थी, फिर आपको लगेंगी नहीं। कोई भी सिचुएशन आपको आएगी कि आपको लगता है कि ठीक है आई है सिचुएशन कोई, तो मुझे उसको डील कैसे करना, बस परमात्मा जुड़े रहकर सिचुएशन को मैं आराम से डील कर जाऊंगी। मतलब बड़ी से बड़ी सिचुएशन भी आपको फिर बिल्कुल छोटी सी लगने वाली है। पहले हम छोटे छोटे मन में विचार आने, है ना, छोटी छोटी परेशानियों में ही फंसे रहते थे, फिर हम धीरे धीरे मन के इन फालतू विचारों से, इन चिंताओं से, है ना, जो हमें टेंशन्स होती हैं, ये हो गया तो कैसा होगा, फ्यूचर कैसा होगा, पास्ट में हो गया, है ना, तो इनके परे उठना हम शुरू हो जाते हैं, है ना। तो दूसरे रथ में जाना मतलब हमारा जो मानसिक अवस्था है वो बदल जाएगी, स्टेट ऑफ माइंड हमारा बदल जाएगा, जहाँ पे ये सारे फालतू विचार जो होते हैं, जो चिंताएं होती हैं, फालतू जो मेंटल चैटर होता है ना, है ना, मेंटल चैटर, मानसिक जो बक बक होती है, तो उनसे अलग हो जाते हैं। एक व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी आ जाती है, इनर पीस फील करता है वो। सिचुएशन बाहर से बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अंदर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, अंदर से बस यही जप चलता रहता है ना। और ये अवस्था हम कब प्राप्त कर सकते हैं? मेडिटेशन से, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से, है ना। इसलिए तो बोलते हैं जो बोला जाता है बस उसको बिना किसी इफ बट के उसको एक्सेप्ट करो, उसको करते चलो, है ना। तो मतलब ये है कि जब आपका भगवान से, जब हमारा भगवान से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो हम सोच सोच कर उसको पहाड़ जैसा बना लेते हैं, है ना। फिर क्या होता है, हमें अपना जीवन डिफिकल्ट लगने शुरू हो जाता है कि मेरी लाइफ में सारे दुख क्यों है। मेजोरिटी लोगों को ये लगता है कि मेरा जीवन बहुत मुश्किल, जैसे सर्कमस्टांसेस मैं फील कर रही हूँ कोई समझ ही नहीं सकता, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तुम्हारी लाइफ बहुत इजी है, लेकिन मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तुम समझ नहीं पाओगे, मेरी लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, हम ऐसा बोलते हैं। 99.9% लोगों को बेचारेपन में रहने की आदत होती है ना। अर्जुन को भी देखो, चैप्टर 1 में अपना जीवन पहाड़ जैसा लगा था, उसको भी यही लग रहा था कि मैं कहां इस सिचुएशन में फंस गया, डिप्रेशन में चला जाता है वो, है ना। वही अर्जुन जब भगवान श्री कृष्णा से भगवत गीता का ज्ञान लेता है, तो 18वें अध्याय में 73 वर्ष में क्या कहता है वो, कृष्य वचनम तव, मतलब भगवान अब मैं वो करने को तैयार हूँ जो आप मुझसे चाहते हो। फिर हम यहाँ इस मानसिक अवस्था में पहुंच जाते हैं। एक मानसिक अवस्था है कि मुझे कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे नहीं पता मेरे को अपनी लाइफ कैसे चलानी है। एक मानसिक अवस्था है जहाँ पे हम अपना जोर लगा रहे होते हैं, पहले सिचुएशन में, पहले रथ में, जंगली घोड़ों के रथ में जब हम होते हैं तो हम अपना जोर लगा रहते हैं कि लाइफ को मैं खुद ही डील कर लूंगी, मुझे आता है डील करना, है ना। लेकिन जब हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, है ना, मेडिटेशन करते हैं, फिर हम इस अर्जुन के इसी लाइन को हम भी बोलते हैं, कृष्य वचनम तव, कि भगवान अब मैं वो करने को तैयार हूँ जो आप मुझसे चाहते हो, मुझे अपने हिसाब से जीवन नहीं जीना, अब मेरे को वो करना है जो आप मुझसे चाहते हो, है ना। हमें क्या लगता है भगवान का काम है हमें खुश करना, लेकिन जब हमें ज्ञान आ जाता है, भगवान श्री कृष्ण हमारी बुद्धि में आ जाते हैं, तब हमें लगता है कि प्रभु स्वामी है, मैं सेवक हूँ, मेरा काम है प्रभु को खुश करना, उनका काम नहीं है मुझे खुश करना, मुझे अपने कर्मों से भगवान को खुश करना, है ना। हमें समझ आ जाता है कि मैं एक सोल हूँ और मेरा एक ही परमानेंट रिलेशनशिप है, और वो है भगवान के साथ, और उसको स्ट्रॉन्ग करने की जगह हम बाकी सब कुछ करते हैं, लेकिन ये ज्ञान हमें नहीं होता कि हमें कहाँ पे अपनी फीलिंग्स है, कहाँ पे हमें लगानी है और कहाँ पे नहीं लगानी है। हम दुनियादारी में अपनी फीलिंग्स लगाते हैं, फिर हम वहाँ पे दुखी होते हैं, है ना। इसलिए है ना गोलोक एक्सप्रेस के टैगलाइन की, बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल, है ना। बाहर से तो हम अपने काम जो भगवान ने हमें ड्यूटीज दी है वो करनी है, लेकिन अंदर से भगवान से कनेक्शन बनाना है ना। क्योंकि फ्रेंड देखो, मछली अगर पानी के बाहर है तो वो तड़प क्यों रही है, है ना। जब भगवत ज्ञान से भ्रम दूर हो जाता है तो समझ आ जाती है कि मैं अपने आप को शरीर मानती हूँ और यही मेरे दुखों का कारण है ना, और मैं भूल गई हूँ कि मैं वो मछली हूँ और समुद्र ईश्वर है मेरे परम पिता, और ये परफेक्शन की स्टेज है। इसमें सारी बातें समझ आना शुरू हो जाती है। फिर क्या क्या मिलता है भगवान से, जब ये परफेक्शन की स्टेज आ जाती है, फिर भगवान से हमें ऐश्वर्य मिलता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, और भगवान हमें जो जो चाहते हैं वो तो मिलता ही है, इसके अलावा हमें भगवान बहुत कुछ दे देते हैं, और जो दिया उसके प्रति भी हमें थैंक यू का भाव आ जाता है, इतना कुछ तो मिला है मुझे अपने जीवन, वो किस चीज की कमी है मुझे, ये पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। ऐसा इतना कुछ मिला होता है लेकिन हमें कभी शुक्राना का भाव नहीं आता, हमें लगता है कि मेरी लाइफ बड़ी अनकंफर्टेबल है, फिर भगवान भी कहते हैं तथास्तु। जब भगवान को शुक्राना करना सीखते हैं ना, ब्लेसिंग्स को अपने काउंट करते हैं, तो भगवान कहते हैं तथास्तु, है ना। तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है फ्रेंड्स, और नेगेटिविटी नेगेटिविटी को। इस चीज को हमें समझना है ना। तो भगवान से हमें ऐश्वर्य मिलता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और विक्ट्री जीत मिलना शुरू हो जाएगी आपको। और जीत मिलती है क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। जब आप भगवान से जुड़े होंगे, सही चीज करोगे, तो जीत हमेशा आपको ही मिलेगी। ये जरूर है कि स्ट्रगल्स आएंगे लाइफ में, बट आपको करेज मिलेगी अगर आप भगवान से जुड़े रहते हो तो। और मॉरेलिटी मिलती है, नीति मिलती है मतलब। और जब भगवान से कोई जुड़ जाता है सिंसियरिटी से, तो फिर होता क्या है, भगवान की कृपा मिलती है, पावर्स मिलती है भगवान से, है ना। तो ये है कृष्ण और अर्जुन का रथ, ये है PhD ऑफ डिवोशन की अवस्था। तो इस मानसिक अवस्था तक आप पहुंच जाओगे। अब जब हम लोग सत्संग में पहुंचे हैं, सत्संग कर रहे हैं, है ना, तो हम सब कहीं ना कहीं इन दोनों रथों के बीच में। क्योंकि अगर हम जंगली घोड़ों के रथ वाली स्टेज पे होते तो आज हम सत्संग में नहीं होते, और ना ही हम अभी परफेक्ट भी नहीं हुए हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सब इन दोनों रथों के बीच में, क्योंकि अभी भी हमें लो फेजेस आते हैं, है ना, क्रिटिसिज्म में हम फंसते हैं, भगवान से इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है अभी हमारा, क्योंकि हमारे अंदर अभी क्या है, दुनियादारी की प्रायोरिटीज हैं, है ना। तो हो सकता है कोई सोल 7th class में आ गई है, कोई 9th में, कोई 10th में, है ना। तो जो लोग भी भगवत गीता सुनना चाहते हैं फ्रेंड्स, है ना, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहते हैं, तो एक्चुअली वो थोड़ा सा हायर स्टेज पर आ गए हैं, है ना, क्योंकि उनके अंदर इतना सेंस कंट्रोल तो आ गया है ना, कि उन्होंने इतना तो समझ लिया है कि ये बातें इम्पॉर्टेंट होती है, है ना। लेकिन हमें अभी आगे भी बढ़ना है। जैसे 10th वाले बच्चे को आगे 11th में जाने की कोशिश करनी चाहिए, 12th वाले को अपने कॉलेज में जाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो हम सबको भी भगवान कृष्ण और अर्जुन वाले रथ पर जाने की कोशिश करनी चाहिए फ्रेंड्स। और धीरे धीरे जब हम ऐसा करेंगे तो हमारी इंद्रियां हमारे काबू में आना शुरू हो जाती है, मन हमारा काबू में आ जाएगा। लेकिन होगा ये परसेंटेज में, 100% कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, है ना। परसेंटेज में जो भगवत गीता का 3rd session लगा रहे हैं, तो उनको पता है कि परसेंटेज में आने चीजें शुरू हो जाती हैं, है ना। तो आप बता सकते हो अभी रिव्यू में, जिनके 2nd session है, 3rd session है, कि आपका इंद्रियों में कितना कंट्रोल हो चुका है, है ना। अब कई बार लोगों में ये भी क्लियर नहीं होता कि मन और बुद्धि में क्या अंतर है। मैं अपना ही बताऊं, मुझे भी नहीं पता था भगवत गीता पढ़ने से पहले कि क्या डिफरेंस है। तो फ्रेंड दोनों ही चीजें हमारे अंदर है, लेकिन दिखती नहीं है हमें, है ना। तो मन क्या है, मन फीलिंग वाला डिपार्टमेंट है जो कि चंचल है, और बुद्धि लॉजिकल रैशनल थिंकिंग होती है जिसमें, जो कि सही गलत की पहचान करता है, है ना। जैसे कि हमने सोचा हमें सुबह उठना है, हमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, या हमें कल सुबह से वॉक करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, अपनी फिजिकल हेल्थ पे वर्क करना है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है, मुझे 8 माला करनी है, 16 माला करनी है, है ना। तो ये किसने बताया, ये बुद्धि ने बताया। लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है और हम उठ नहीं पाते हैं, आलस आ जाता है, ये किसने बताया, ये मन ने बताया, क्योंकि मन नहीं माना, है ना। तो मेंटल हेल्थ जब खराब होती है तो हमारा मन बिगड़ा हुआ बच्चा बन जाता है फ्रेंड्स, तो ये बुद्धि की बात नहीं मानता, है ना। तो अच्छी मेंटल हेल्थ का मतलब है बुद्धि में भगवान आ जाएंगे, बुद्धि स्ट्रोंग हो जाएगी, तो उससे क्या होता है, हम अपने मन को कंट्रोल कर पाएंगे, और मन के थ्रू हम अपनी इंद्रियों को काबू कर पाते हैं, है ना। और फ्रेंड्स सक्सेस ट्रू सेंस में तभी आ सकती है जब हमारा मन और इंद्रियां हमारे काबू में होंगे। और हम मन नहीं है, हम इंद्रियां नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम क्या है, हम एज ए सोल हम अपने मन को अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं और एक बढ़िया लाइफ जी सकते हैं। और होगा कब ये, जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां काबू में होंगी, है ना। मन कंट्रोल में होगा तो हम सुबह वॉक पे भी जा पाएंगे, योगा भी कर पाएंगे, अच्छी बातें भी कर पाएंगे, जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे तो फालतू निंदा चुगली से बचे रहेंगे। और ये होगा तब जब हमारी बुद्धि में भगवान श्री कृष्ण आएंगे, या स्पिरिचुअलिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, भगवान खुद आएंगे, तभी हम अपने मन और इंद्रियों को फ्रेंड्स कंट्रोल में कर सकते हैं, है ना। तो ट्रू सेंस में सक्सेस कब होगी, जब हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे, है ना। जब हम समझ जाएंगे कि भाई मैं मन नहीं हूँ, मुझे मन के अकॉर्डिंग नहीं चलना, मन ने बोला उठ तो उठ, मन ने बोला सोना तो सो जाना, मन ने बोला खाना तो खा लेना, मतलब टोटली मन गणन जीवन जी, यही नहीं पता होता कि हमें दूसरों से बात कैसे करनी है, अपने क्रोध को कैसे काबू में करना है, पता होता है हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, या करना भी चाहिए। और होगा कब, जब हमारी बुद्धि में भगवान आएंगे, स्पिरिचुअलिटी आएगी, प्योरिटी आएगी, है ना। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, और आपके कोई एक्सपीरियंसेस है तो आप बता सकते हो। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल।
हेलो एवरीवन, थैंक यू मोनादी, थैंक यू सो मच. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आपकी आवाज सुन के एक वो कहते हैं ना कि एनर्जी बूस्टर, जस्ट लाइक दैट. आपकी जो आवाज है और जो वे ऑफ आपका जो वे है वो एक एनर्जी बूस्टर है हमारे लिए, हम सबके लिए, नॉट ओनली फॉर मी, सबके लिए. तो आज आपने जो हमें टॉपिक करवाया है उससे मेरी ये लर्निंग्स बनी है कि जो पहले रथ का अर्थ है कि हमारी अनकंट्रोल सेंसेस को हमारा अनकंट्रोल माइंड लीड कर रहा है, जिससे हमारी इनर कॉन्शियस समझ नहीं पाती और डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती है. ये सब तब होता है जब हम हमारे परम पिता श्री हरि से बहुत दूर होते हैं. ये सिचुएशन एक सोल को तब फेस करनी पड़ती है जब वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज से कोसों दूर हो और अपनी अनकंट्रोल सेंसेस को खुश करने के चक्कर में किसी भी डायरेक्शन की ओर दौड़ते हैं विदाउट नोइंग अवर अल्टीमेट गोल. और वो अल्टीमेट गोल है अपने परम पिता प्रभु श्री हरि के परम धाम को पाना, उनके प्यार को पाना. हम हमारी लाइफ में अपनी सेंसेस पर ही फोकस रखते हैं जिससे हम कभी भी अल्टीमेट एंड ट्रू हैप्पीनेस को नहीं पा पाते. और दूसरे रथ का अर्थ है कि जब हम हमारी लाइफ के अल्टीमेट गोल को जान जाते हैं, प्योर भक्ति मार्ग पर चलने लगते हैं, तो हमारी अनकंट्रोल सेंसेस को हमारे परम पिता श्री हरि कंट्रोल करते हैं. तब हमारी बुद्धि भी कंट्रोल हो जाती है, हमारी सेंसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है जो कि है अपने प्रभु के परम धाम की ओर बढ़ना. हमारी कंट्रोल सेंसेस होने के बाद हमारी सोल रिलैक्स हो जाती है, प्रभु से कनेक्ट हो जाती है, ट्रू हैप्पीनेस फील करती है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो काम रहती है. इसलिए हमें हमारी लाइफ में प्रभु श्री हरि को प्रायोरिटीज देकर उनके दिए गए भागवत गीता के ज्ञान को इम्प्लीमेंट करके एक रिलैक्स्ड और बैलेंस्ड लाइफ जीनी है और ट्रू हैप्पीनेस फील करनी है. मेरी लाइफ के एक्सपीरियंस में बताना चाहती हूँ कि ये मेरी थर्ड रीडिंग है और मैं ये सत्संग स्टार्ट करने से पहले स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के नाम पे कुछ भी नहीं करती थी, कुछ भी नहीं. तो जब मेरी फर्स्ट रीडिंग स्टार्ट हुई तो मैंने मेरी बात हुई थी मोनादी से, तो उन्होंने मुझे बोला था कि तुम थोड़ा सा स्टार्ट करो. तो मैंने थोड़ी थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस स्टार्ट करी थी, बट मैं नहीं कहूंगी कि एकदम से चेंजेस आई हैं मेरे में धीरे धीरे. मैंने अपनी लाइफ में जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती गई, कुछ जो भी मुझे समझ आता था वो मैं ट्राई करती थी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने में, और काफी हद तक मैंने इम्प्लीमेंट भी किया है और ये चेंजेस कुछ लोगों ने मुझ में नोटिस भी किए हैं, मैंने खुद ने किए हैं. और मेरा ये है कि आज मैं जैसे सुबह उठ पाती हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं सुबह 4 या 4:30 उठूंगी और सबसे पहले मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों ने स्कूल जाना है तो मुझे सुबह उनका रूटीन में आना पड़ता है, तो लेकिन उनकी रूटीन से पहले मुझे अपना करना है, तो उसकी वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ. तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं कभी उठूंगी या ये सब प्रैक्टिसेस करूंगी. आज मैं लड्डू की, राधे कृष्ण की सेवा करती हूँ, उनको प्रॉपर 3 टाइम का खाना खिलाती हूँ. मतलब कभी नहीं भी होता तो मेरे मन में कुछ होता रहे, जैसे मैं कभी होता है कि मैं उनको नहीं खिला पाती हूँ, तो कुछ होता रहा यार कुछ तो उनको खिलाऊं, कुछ तो करूं, तो जैसे तैसे मैं उनको कुछ ना कुछ खिला देती हूँ. तो मैं ये सब बताना चाहती हूँ कि पहले ये सब मैं नहीं करती थी, बिल्कुल भी नहीं. मुझे लड्डू गोपाल की, राधे कृष्ण की सेवा का कुछ नहीं पता था. और कहते ना कुछ एक आपको कुछ तो पता हो तो आप उस हिसाब से, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था. लेकिन मैंने श्री हरि से प्रे करा कि श्री हरि मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आप प्लीज मुझे साथ साथ में गाइड करते रहना जैसा जो जो होता है. तो मैं खुद में ये चीज फील करती हूँ कि श्री हरि मेरे माइंड में कुछ ऐसी बातें भरते बताते हैं मुझे, मेरी इनर कॉन्शियस से कुछ ऐसे, नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो. मैं किसी से सुनती नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं बताता कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए. मेरे अंदर से आवाज आती है, अच्छा मुझे ऐसे करना है, मुझे उनको सुलाना है, मुझे उनके नाइट सूट्स लाने हैं, मुझे उनके कपड़े लाने हैं, अलग अलग अच्छे अच्छे लाने हैं. तो उनके, लेकिन मैं बताऊं कि मैं उनकी शॉपिंग करती हूँ ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा मुझे खुद की शॉपिंग करके नहीं लगता जितना अच्छा मुझे उनकी शॉपिंग करके लगता है. तो ये मेरे एक्सपीरियंस भी हैं और ये मेरी चेंजेस भी हैं. अभी धीरे धीरे मैं श्री हरि से प्रार्थना करें कि मैं थोड़ा और इन स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में आ गया हूँ. तो कुछ भी है जो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन वो मुझे साथ साथ में बताते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सब करूँ. हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच पूजा जी, ब्यूटीफुल लर्निंग्स आप हमेशा शेयर करते हो। पहले तो आपने पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लेरिफाई किया, और दूसरा जो अपनी चेंजेस बताई है ना नए डिवोटीज को, मैं भी बताना चाहती हूँ कि मैं बताती रहती हूँ आपको कि हम चार लोगों ने ये सत्संग स्टार्ट किया था स्पिरिचुअल लर्निंग, मैं, मेरी फ्रेंड नीना, ममता जी और मेरे हस्बैंड, है ना, ये चार लोग सत्संग में आने शुरू हुए थे। तो 2-3 महीने बाद ही पूजा जी ने भी ज्वाइन कर लिया था हम लोगों को, है ना। तो जैसे कि आपको खुद ही बता रही है कि कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करती थी। अब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो हम करते थे बचपन से, मैं बता रही हूँ आपको कि मैं करती थी, व्रत भी रखती थी, लेकिन वो भाव नहीं था, है ना। चाहे करती थी लेकिन फिर भी वो मतलब ठीक है करना है, है ना, इनर पीस मिल रही है लेकिन करना क्यों है ये सब कुछ पता नहीं था, है ना। और ये चीजें जैसे हम भगवद गीता पढ़ रहे हैं, चीजें समझ के हम कर रहे हैं, और भगवान आपको फिर नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं कि एक्चुअली शुद्ध भक्ति का मीनिंग बताते हैं कि भाई तुम्हें करना क्या है, है ना। मतलब हम जो ये 2 टाइम की भक्ति है ना, इसके कॉन्सेप्ट से ऊपर उठ जाते हैं कि ये भी करना है, ये तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये करना है, लेकिन अपना पूरा जीवन जो अपने 24 घंटे या पूरा दिन है, वो फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भक्ति नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है कि नहीं आप किसी से बात भी कर रहे हो तो आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। ऐसे आप बात करते हो कि किसी का मन अशांत ना हो जाए, आप अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखते हो, आपका क्रोध कम होने शुरू हो जाता है परसेंटेज में, है ना। तो आप पूरा दिन ही जो 24 घंटे हैं उसमें हम मतलब भगवान से जुड़े रहते हैं, ऐसा लगता है अंदर से आवाज आ रही है, भगवान देख रहे हैं, भगवान सुन रहे हैं कि मैं क्या बात कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, है ना। कोई गलत काम करने में 100 बार सोचती हूँ कि नहीं मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, फिर अंदर से आवाज जब आ जाती है कि नहीं मुझे नहीं करना, है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक्ट करना शुरू हो जाते हैं। और ये परसेंटेज में आप खुद फील करोगे फ्रेंड्स, और ये हम कर सकते हैं, वही बात है, पूजा जी कर सकती है, मैं अपनी लाइफ पे चेंजेस फील कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या है, चलना नित्य निरंतर है और सिंसियरिटी से आगे बढ़ना है भगवान के रास्ते में। भगवान क्या देखते हैं, सिर्फ छल कपट से रहित हमारा मन, हमारी बुद्धि, है ना। जब वो आत्मा हमारी छल कपट से रहित हो जाती है ना, तो अपने आप ही हमें नेक्स्ट स्टेप अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाते हैं, उसके लिए हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही पता होता है हमें क्या करना है या हमें इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच पूजा जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स? हरी बोल,
हरी हरी बोल।
हाँ जी कुमार जी, हाँ जी,
हाँ
जी
कुमार, हरी हरी बोल मोना दी। तकरीबन 2-2.5 महीने बाद, बहुत लंबी इंतजार के बाद आपकी मधुर वाणी सुनने को मिली, और आज का सत्संग भी बहुत ही बढ़िया था, अच्छा सा टॉपिक था। तो आज की जो 2 रथों की तुलना को मैं इस तरह से समझती हूँ कि हमारे जीवन के ना 2 पक्ष होते हैं, नेगेटिविटी होती है, पॉजिटिविटी, ये सब हमारे मन में अंदर ही होते हैं हमारे। तो जैसे आपने पहले रथ के बारे में बताया ना, क्या हम उस हिसाब से सोचते हैं कि पहले में जो आपने ना नेगेटिविटी वाली बात बताई है कि जब हमारा मन ना, जो वैसे हम अपने मन के ही गुलाम होते हैं, हमारी इंद्रियों का जो मालिक होता है वो मन होता है। जब हम अपनी मन और बुद्धि को, जब हमारा मन है ना, हम बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है, तो हमारी इंद्रियां अपने हिसाब से ही चलने लग जाती हैं, है ना। वो अपने जहां मन कहेगा वहीं से हमारी इंद्रियां हमारा वर्क करना शुरू कर देती हैं। तो इससे जो हमारी आत्मा है ना वो संतुष्ट नहीं रहती, और फिर जो हमारी इंटेलिजेंसी है ना, और या हमारी बुद्धि है ना, उस पे भी पर्दा ही पड़ जाता है, वो उसी के अनुसार वर्क करने लग जाती है। तो मतलब इस जो पहला जो रथ है ना, उसमें हमारी जो है ना जीवन का सार नहीं है, उसमें हमारी जीवन में या हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। तो जो दूसरा जो रथ आपने बताया ना, जिसमें हम अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब जब हमारा मन कंट्रोल आ जाता है तो हमारे जो विकार हैं वो भी, हम अपने शरीर में जो इंद्रियों के जो विकार होते हैं ना, उनसे भी रहित हो जाते हैं, और हमारे जो व्यवहार में क्या आ जाता है, शुद्धता, सरलता, निर्मलता आ जाती है, और हम प्रभु कृपा से अध्यात्म की ओर भी बढ़ते हुए जीवन की सफलता की ओर चले जाते हैं। हम बस इस समय मतलब यही सोचते हैं कि अगर हमें अपने जीवन में संतुष्टि लानी है तो हमें अध्यात्म की ओर बढ़ते हुए श्री हरि के बताए हुए मार्ग पर चलते रहना है, और अपने मन को प्रभु चरणों से जोड़ के ही रखना है। और जो मैं अपने जीवन का अगर एक्सपीरियंस बताऊं तो ना, मैंने तो शायद मतलब मेरे को इस बात में हेजिटेशन नहीं होगी कि मैंने सीनियर सिटीजन बन के ही अध्यात्म की ओर चलना शुरू किया है, पर सच में मैं बहुत कई बार पछताती हूँ कि मैंने बहुत सारा या तो जीवन है ना ऐसे ही निकाल दिया। अब मैं इस जब से इस ग्रुप से जुड़ी हूँ तो जैसा जैसा बताया जाता है ना ग्रुप में, बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ और कुछ कर भी पा रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि यदि प्रभु श्री हरि की इसी तरह से कृपा करते रहे और आप लोगों का साथ बना रहा तो हो सकता है मैं भी आप सभी के साथ ना रेस में नंबर वन पे मतलब तकरीबन आपके साथ तो हो ही जाऊंगी, जो कि मैं अभी अपने आप को सोचती हूँ मैं आप सब लोगों से बहुत पीछे हूँ। तो डेफिनेटली मैं कोशिश अपने मन से कर रही हूँ। तो बहुत सारी बातें मुझे इस ग्रुप से जुड़ने के बाद ही पता लगी हैं कि भोग लगाना, जैसे अभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा तो नहीं कर पा रही हूँ, पर फिर भी मैं श्री कृष्ण जी को या श्री हरि को अपने छोटे से मंदिर में बना के रखा हुआ है, तो मैं कोशिश करती हूँ अपना जो भी भोग लगाना है बनाना कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो बाकी आप सबकी गाइडेंस से मेरे को भी लगता है कि मैं भी श्री हरि की कृपा से जीवन में कुछ ना कुछ आत्मा को संतुष्टि के लिए कर पाऊंगी। हरि हरि बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल लर्निंग्स एज ऑलवेज कुमार जी, ब्यूटीफुली आपने पूरे टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से बहुत ही प्यारे ढंग से आपने एक्सप्लेन किया है और बिल्कुल सही बताया कि जो पहला रथ है वो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और हमें पहुंचना का है, हमें पहुंचना कृष्ण और अर्जुन के रथ में है ना। बस वही है ना, जीवन और मृत्यु के बीच के सफर को ही जिंदगी कहते हैं, है ना। तो हमें जाना कहाँ है, अल्टीमेटली हमें परफेक्शन पे जाना है ना। इस ह्यूमन लाइफ का पर्पस यही है कि जहाँ पे हम हैं उसके नेक्स्ट लेवल में जाना है ना। वो जाते कैसे हैं, भगवान के साथ जुड़ के जा सकते हैं, है ना। तो ऑटोमेटिकल है कि जब हम पहले रथ से निकलना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह है हम इससे छूटने लगते हैं और हम अंदर डिवाइन क्वालिटीज है वो हमारे अंदर प्रतिशत में आना शुरू हो जाती है ना। ब्यूटीफुली आपने समझाया और आपने कहा कि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बहुत पीछे हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कुमार जी। और आपके माध्यम से मैं सबको बोलना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग बहुत आगे हैं और आप लोग बहुत पीछे हो, हम लोग सब एक ही रथ में चल रहे हैं, एक ही गाड़ी के सवार हैं हम लोग, है ना। तो उसमें यह है कि बस कोई फोर्थ क्लास में है तो कोई फिफ्थ क्लास में है ना, तो बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के भगवान ने हमें इकट्ठे किया है, तो कोई पर्पज है ना कि हम लोग एक जो एक हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है इसके द्वारा हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो रही है हमारी, आप बोल सकते हो, है ना। एक भक्ति का रियल मीनिंग हम समझ रहे हैं इकट्ठे मिलकर, एक दूसरे की बातें हम सुनते हैं, एक दूसरे के रिव्यू सुनते हैं, तो हम बहुत कुछ सीखते हैं अगर हम माइंड हमारा ओपन हो तो। हम अगर हमें लगे कि नहीं मेरे को तो सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है यार, मैं तो भक्ति में बहुत आगे हूँ, है ना, तो हम फिर कुछ नहीं सीख पाएंगे। अगर हम सोच लें कि मैं एक बच्चे से भी कुछ सीख सकती हूँ, कई पॉइंट्स है ना हमारे बच्चे सिखा देते हैं हमें, कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि हमें लगता है यार सच में ये ज्यादा अच्छा पॉइंट है, वैलिड पॉइंट है, हमें यही कर लेना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही हम लोग सब मिलजुल के चल रहे हैं और भगवान ने जिस भी टाइम पे जिस भी एज पे, ये तो हम मेरे को भी लगता है कि एज ए मदर जैसे मैं अगर पहले से जुड़ी होती है ना तो भगवत गीता से ये सब इंस्ट्रक्शंस ये सब जो ज्ञान है मुझे पहले ही मिलता है तो मेरा लाइफ और भी बेटर होनी थी, पहले से ही बेटर होनी शुरू हो जानी थी। जो गलतियां मैंने की वो मैंने नहीं करनी थी। फिर भी बोलते हैं ना जब जागे तो भी सवेरा, अभी हम समझ लें चीजों को तो भगवान ने हमें चुना है ना उन चीजों को समझने के लिए, है ना। तो हमें बस चलते चलना है और बस यही सोचना है कि बस हमें समझना है और भगवान के अकॉर्डिंगली जो हमें भगवान कह रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइफ जीना है ना। थैंक यू सो मच कुमार जी, थैंक यू। हाँ जी, कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स, हरी बोल।
हरी हरी बोल मोना दी, हरी हरी बोल एवरीवन। पहले तो बहुत दिनों के बाद आपकी आवाज सुनने को मिली, थैंक यू वेरी मच। और आप हमें दूध गर्म करके दही लगा के छोड़ के हुए थे, आज आपने अच्छी तरह दो रथों की तुलना में हमारा अच्छी तरह मंथन कर दिया कि माखन निकालना है भाई, घी तक जाना है, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आपने इतने अच्छे से समझाया, जितना पीछे छुटा हुआ था हाफ तो क्लियर हुआ, तो आज दो रथों की तुलना आपने बताई, तो वही सेम जैसे सबने कहा मेरा भी वही है कि नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं हम, नियर हम वर्ल्डली देखते हैं अपने आप को, नियर्स एंड डियर्स में बस मोह माया में फंसे हुए हैं, मेरे बच्चे मेरा परिवार। तो जैसे हम मोह में फंसते हैं तो बुद्धि का नाश होता है, तो आपने मन और बुद्धि का कहा, अगर सुबह उठने में हम आलस कर देते हैं तो सारा दिन जो इतनी टाइम से जगी अगर मेडिटेशन नहीं किया योगा नहीं किया तो ऐसे गिल्ट रहता है। अगर हम मन की बात करते हैं तो अगर हम भगवान की दी हुई बुद्धि के अनुसार हम चलते हैं, जो हमारी आत्मा है उसके निर्देश अनुसार चलते हैं, तो फिर सारा दिन ऐसे पॉजिटिविटी रहती है, हर काम हम अच्छे से कर पाते हैं। तो हर काम टाइम से होगा तो हमारे जो भी कर्म है वो अच्छे से हम कर पाएंगे। तो आपने यही नेगेटिविटी से हमें दूर रखना, तो उसके लिए मैं समझती हूँ सबसे पहले हमें सत्संग बहुत जरूरी है। अगर मैं पहले की बात करूँ तो जब हम सत्संग नहीं सुनते थे तो हमें इस बात का ज्ञान ही नहीं था कि आत्मा है या हम सोल हैं। हम तो अपने नाम से ही वही जो किसी ने दिया हुआ है तो उसको लेके बैठे हुए थे, ये हस्बैंड है, ये बच्चे हैं, भाई बहन, ईयर्स एंड ईयर्स में फंसे हुए हैं बस। तो अभी हम देखें तो अभी सत्संग के माध्यम से ही हमें पता चला, मुझे पता चला है कि भाई हम सोल हैं और हमें प्रभु के धाम तक जाना है, प्रभु के धाम तक जाना है। तो उसके लिए हमें क्या तैयारी करनी है? तो पहले हम खाया पिया घूमे फिरे, तो अब हम देखें तो अब मुझे पता है कि स्पिरिचुअल पढ़ने हैं भाई, उससे मुझे ज्ञान मिलेगा, सत्संग डेली करना है और जो भी उस पर बताया जा रहा है उसको अप्लाई करना है, इम्प्लीमेंट करना है, उसके ऊपर माला करनी है, सत्संग सुनना है, स्पिरिचुअल पढ़ने हैं। तो भगवान जी कोई खुद आके हमें नहीं बोलेंगे, आपसे मैंने सीखा कि भगवान जी वही है जो स्पिरिचुअल पे लिखा हुआ है भाई। अगर हम रामायण पढ़ते हैं तो उसमें भगवान जी ने जो भी किया वो तो भगवान थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनके भाइयों ने या उन्होंने या सीता माता को किसी ने नहीं निकाला या कुछ भी, वो हमारे लिए बता गए हैं भाई आगे आने वाले कलयुग में आप लोग ऐसे चलो, ऐसे भाई बनो, ऐसी पत्नी बनो, ये हमें गाइडनेस वो पहले दे गया। अगर गीता जी की बात सुने तो वो सुन के हमें जब मैं पढ़ती हूँ तो पता चलते है भाई कैसे जीना है, क्या करना है। अर्जुन जी को जो निर्देश दे रहे हैं श्री कृष्णा जी, तो वो ऐसे करने हैं भाई, कैसे उन्होंने बताया कि मोह में पड़ोगे तो बुद्धि का नाश हो जाएगा। तो बस यही है, हमें जीने का थोड़ा सा ढंग बदलना है, पीस लानी है, शांति रखनी है। अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भगवान जी को समर्पित करते जाना है, तो उनसे कोई आशा नहीं रखनी है, डिटैच रहना है, एक्टिविटी से दूर रहना, हमें पॉजिटिविटी रहना, दूसरों का भी भले की सोचनी और खुद का भला हम तभी कर पाएंगे अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो उससे हमारी आत्मा शुद्धि होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तो पॉजिटिविटी अगर माइंड होगा तो हमें सब अपने लगेंगे और हम सबको प्यार की नजर से देख पाएंगे और भक्ति के लेवल पर भी आगे बढ़ जाएंगे। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज किरण जी, ब्यूटीफुली आपने भी बहुत अच्छे से तरह से टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर दिया और अपने एक्सपीरियंस भी बताए, है ना। तो बिल्कुल आपने कहा कि भक्ति क्या है, इसको समझने का सत्संग एक मेन माध्यम है ना। फ्रेंड देखो, जो या तो हम कोई अपने स्क्रिप्चर्स पढ़े वो भी डीपली, है ना। कई लोगों को देखे हैं कि वो कहते हैं कि हमने रामायण पढ़ी है या हमने भगवद गीता पढ़ी है 2 बार 3 बार, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ महक नहीं हमें दिखती कि उन्होंने उसको अप्लाई किया हो। तो हमें वो उन्होंने भी वैसे ही पढ़ी जैसे हम अपनी किताबें पढ़ते थे, भगवान के आगे बैठ के पढ़ लिया, या जो भी किताबें हम पढ़ते हैं तो वैसे ही पढ़ते थे हम, कोई डीपली हमने भी उसका अध्ययन नहीं किया। तो सत्संग से हमें फ्रेंड राइट डायरेक्शन मिलती है, कोई भी जो हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, है ना, तो उससे हमें समझ आता है, ज्ञान मिलता है ना, हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं कि हमें करना क्या लाइफ, है ना, भगवान ने अपनी लाइफ कैसे जी, या जो हमारे बड़े बड़े जो तपस्वी हुए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ कैसे जी। तो जैसे महाभारत से हम देख सकते हैं अर्जुन ने अपनी लाइफ कैसे डील की, अपनी सिचुएशन से, अपनी डिफिकल्टीज से कैसे बाहर आया वो, है ना। भगवान श्री कृष्णा ने अपनी लाइफ कैसे जी, है ना, उनका सारा जीवन ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो युद्धों में व्यतीत हुआ, है ना, लाइफ संघर्षों से भरी इसलिए दिखाते हैं। भगवान श्री राम का लाइफस्टाइल देख ली, कैसे उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, तो वो हमें गाइड कर रहे हैं ना, जैसे कि किरण जी बता रहे हैं, हमें गाइड करते हैं कि भाई जिंदगी है तो मुश्किलें भी आएंगी ना, जब डेथ होगी फिर तो मुश्किलें भी खत्म हो जाती है, फिर कौन सी मुश्किलें, हम चाहते हैं हमें लाइफ ही हम जिंदा रहे 200 साल तक और कोई लाइफ में मुश्किलें भी ना आए, तो ऐसे नहीं होता ना। भगवान खुद ही अपनी लाइफ के द्वारा हमें बता रहे हैं, रामायण महाभारत स्क्रिप्चर्स के द्वारा हमें बता रहे हैं कि भाई लाइफ तो संघर्षों से भरी हुई है ना, तो आपको जीना कैसे है, उनको डील कैसे करना है, वो आपको आ जाता है, फिर हमें आ जाता है जब हम भगवान से जुड़े रहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, भगवद गीता अपने उपनिषद जैसे ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमें ज्ञान मिलता है, तो अपने आप ही फिर अंदर से आवाज आनी शुरू हो जाती है, किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, अपने आप ही हम कैपेबल हो जाते हैं कि हम सिचुएशंस को हैंडल कर सके, है ना। थैंक यू सो मच किरण जी। हाँ जी, तो अब भजन की तरफ चलते हैं। हरी बोल,
हरी हरी बोल। आज का सत्संग बहुत ही दिव्य था, बहुत ही अच्छा था,
और मुझे लगता है सबको ही बहुत अच्छे से समझ आ गया है मैं इसके बारे में क्या फिर से रिव्यू दूं, बट ये है कि एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगी कि अब जब से मैंने गीता का ज्ञान लिया है, आपसे पाया है, तो आई कैन डिफ्रेंशिएट मेरी गीता सुनने से पहले की लाइफ और अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ और मैं देख सकती हूँ कि पहले वाला रथ जो था जंगली घोड़ों का, उसमें मैं कैसे एक्ट करती थी और नाउ दीज डेज मैं कैसे एक्ट करती हूँ। तो जो मेरा श्री हरि के साथ जो रिश्ता बना है वो मैं उसको फील करती हूँ, उसको जीती हूँ, सिर्फ मैं ही नहीं मेरी फैमिली मेंबर्स जो है, मेरे हस्बैंड, मेरे किड्स वो भी, और हम उनका अपनी लाइफ में हम डे टू डे एवरी मिनट एवरी सेकेंड हम उनको फील करते हैं अपने साथ। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी है। बाकी मैं, वो कहते हैं ना कि हम कई अच्छी बात करें तो नजर लग जाती है, तो मैं अपना रिश्ता श्री कृष्ण जी के साथ कैसा डेवलप हुआ है तो मैं कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस मैं बताऊंगी भी नहीं तो ये इतना अच्छा है। तो और सच में वो आनंद मुझे पहले कभी नहीं मिला जो अब मिल रहा है। मुझे लगता है इतना ही कहना बहुत होगा। अब मैं अपने भजन की तरफ चलती हूँ। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारों में गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े बिना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल
हरि हरि बोल बहुत ही प्यारा भजन गाया थैंक यू सो मच हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 बोल एवरीवन हरे हरे बोल घर घर मंदिर हर मन मंदिर जय श्री राधे कृष्ण एवरीवन हरे बोल